एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मन फिराने यीशु को हृदय में
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
सर्मन नंबर 272, द मीक, जो नम्र हैं। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हमारे हृदय को छू दे, उसे तू खोल, ताकि हम तेरे वचनों को सुन कर के समझने सके और तेरे राह में चलने सके। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरे वचन को समझने और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर, उन्हें तेरा वचन से आशीष दे पिता, और मेरे संग हो, तेरा वचन बतलाने के लिए तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है जो नम्र हैं। आइए हम बाइबल से तीसरा धन्य वचन जो प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में कहे उसको पढ़ते हैं। यह मिलता है मत्ती 5:5 में। यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आम धारणा यह है कि नम्रता का संबंध डरपोकपन और कमजोरी से होता है। हालांकि आज के पाठ में हम नम्रता के एक नए आयाम की खोज करेंगे, एक ऐसा गुण जो सोने से भी ज्यादा वांछनीय है। नम्र और शांत आत्मा चाहिए। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां नम्रता और दयालुता कम और आक्रमकता और अशिष्टता अधिक दिखती हैं। कभी कभी दूसरों को यह सुखद आश्चर्य की बात लगती है जब हम उनके साथ नम्रता से पेश आते हैं, लेकिन नम्रता का यह गुण ही परमेश्वर को प्रिय है, क्योंकि यह प्रकट करता है कि हम वास्तव में परमेश्वर के बच्चे हैं। इस तीसरे आशीर्वाद और इससे पहले के दो आशीर्वादों के बीच प्यारों सीधा संबंध है। आत्मा की दृढ़ता और ईश्वरीय दुख हृदय में नम्रता उत्पन्न करते हैं। पूरे आशीर्वाद में मसीही अनुभव की एक आगे बढ़ती हुई रेखा है। जिन लोगों ने मसीह की आवश्यकता महसूस की है, जिन्होंने पाप के कारण शोक मनाया है और दुख की पाठशाला में मसीह के साथ बैठे हैं, वे दिव्य शिक्षक से नम्रता सीखेंगे। सभी शास्त्रों में परमेश्वर उन लोगों के बारे में विशेष स्नेह से बात करता है जो चरित्र में कोमल हैं। वह कोमलता से उन्हें अनमोल वादों से प्रोत्साहित करता है और फिर उन्हें हमारे उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उसकी कृपा से सच्चे नम्र लोग स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं, उन्हें राज्य पर अधिकार करने के लिए तैयार करते हैं। आइए हम मत्ती 5:5 में जो धन्य वचन दिया गया है उसका परिभाषा करने की कोशिश करें। हिब्रू शब्द अनाओ और इसके ग्रीक समकक्ष प्रोस का हमेशा एक ही तरह से अनुवाद नहीं किया जाता है। आधुनिक भाषाओं में नम्र शब्द का अर्थ मूषक, पालतू, डरपोक, विनम्र होता है। इसलिए आज नम्रता अक्सर कमजोरी या चरित्र की ताकत की कमी का संकेत देती है। इस परमानंद को समझने के लिए हमें नम्र शब्द के अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। प्रेरित परिभाषा का सार नम्रता को स्वार्थ की अनुपस्थिति और आत्म विस्मृति की उपस्थिति के रूप में दर्शाता है। यह स्वयं का शासन, एक शांत और भरोसेमंद आत्मा, हृदय की विनम्रता, ईश्वर की अपनी पसंद का आभूषण है। तो नम्रता एक आंतरिक शांति और मन की शांति है जो बाहरी रूप से अनुग्रहपूर्ण, विनम्र, दयालु और मैत्रीपूर्ण व्यवहार में खुद को दिखाती है। इसे मन और हृदय का एक दृष्टिकोण कहा गया है जो पवित्रता के लिए रास्ता तैयार करता है। भजनकार के माध्यम से परमेश्वर ने नम्र लोगों को पृथ्वी देने का वादा किया। इसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 37:11 में। दानियल ने कहा कि यह सारे आकाश के नीचे का राज्य है जो परम प्रधान के पवित्र लोगों को दिया जाएगा। यह हम पाते हैं दानियल 7:27 में। परंतु यीशु द्वारा प्रतिज्ञा की गई पृथ्वी सब पृथ्वी के ऊपर पुनर्स्थापित की गई है, अर्थात नई पृथ्वी है जिसमें धार्मिकता वास करती है। हम पढ़ते हैं इसे पत्रस, दूसरा पत्रस की पत्री और उसका 3:13 में। मानव स्वभाव हमेशा अभिव्यक्ति के लिए संघर्षरत रहा है, संघर्ष के लिए तैयार रहता है, लेकिन जो मसीह के बारे में सीखता है वह अहंकार, अभिमान, स्वच्छता के प्रेम से खाली हो जाता है और आत्मा में शांति होती है। आत्मा पवित्र आत्मा के अधीन हो जाती है, तब हम सर्वोच्च स्थान पाने के लिए उत्सुक नहीं होते। हमें भीड़ लगाने और खुद को ध्यान में लाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हमारा सर्वोच्च स्थान हमारे उद्धारकर्ता के चरणों में है। यीशु नम्रता का आदर्श है, हमें यीशु का आदर्श लेना है। यीशु का आदर्श हम मत्ती 11:28-29 में उसका नम्रता का आदर्श पाते हैं। मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मत्ती 11:28-29 में, और वह कहता है कि हम उससे सीखे। यीशु न केवल सत्य सिखाता है, वह स्वयं सत्य है। वह जो भी सिखाता है वह जीता है। वह अपने श्रोताओं से जो बनने के लिए कहता है वह स्वयं है, इसलिए वह लोगों को अपने पास आने के लिए आमंत्रित कर सकता है। वह जो विनम्र और हृदय से दीन है, मत्ती 9:36। हमें मसीह के स्कूल में प्रवेश करना है, उससे नम्रता और दीनता सीखनी है। मुक्ति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मा को स्वर्ग के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रशिक्षण का अर्थ है मसीह का ज्ञान। हमारे उद्धारकर्ता की विनम्रता के उदाहरण पर विचार करने से हमारे दिलों से अहंकार और श्रेष्ठता की भावना का कोई भी अवशेष धुल जाना चाहिए और मसीह की विनम्रता कभी भी किसी भी तरह से कमजोरी नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक थी। प्यारो, जीवन के सभी तुच्छ अनुभवों के माध्यम से उन्होंने मानव संतानों के बीच चलना स्वीकार किया। एक राजा के रूप में नहीं जो सम्मान की मांग करता हो, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका मिशन दूसरों की सेवा करना हो। उनके व्यवहार में कट्टरता या कठोर तपस्या का कोई दाग नहीं था। दुनिया के उद्धारक का प्रकृति स्वर्गदूतों से भी बड़ा था, फिर भी उनकी दिव्य महिमा के साथ उनकी नम्रता और विनम्रता भी थी जिसने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। अपने सांसारिक जीवन के इस एक विजयी दृश्य यरूशलेम में विजयी सवारी में उद्धारकर्ता स्वर्गीय स्वर्गदूतों द्वारा अनुरक्षित होकर प्रकट हो सकता था और परमेश्वर की तुरही द्वारा उसका स्वागत किया जा सकता था, लेकिन ऐसा प्रदर्शन उसके मिशन के उद्देश्य के विपरीत होता, उस कानून के विपरीत होता जिसने उसके जीवन को नियंत्रण किया था। वह उस विनम्र भाग्य के प्रति सच्चा रहा जिसे उसने स्वीकार किया था। मानवता का बोझ उसे तब तक उठाना होगा जब तक कि उसका जीवन दुनिया के जीवन के लिए ना दिया जाए, यह उसका उद्देश्य था। मत्ती 11:28-29 में यीशु की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि यीशु हमें बुलाता है उसके पास और हम उससे सीखे नम्रता और इस जीवन में उस नम्रता को लागू करें कि लोग देखें हमें और वे यीशु मसीह के पास आने के लिए आकर्षित हो। हम बाइबल में आगे उदाहरण पाते हैं कि लोगों ने हिंसा से नम्रता की ओर आई। यह हम एक उदाहरण गिनती की पुस्तक 12:3 में पाते हैं। वह मूसा का उदाहरण है। मूसा जो परमेश्वर का दास था, उसका भविष्यवक्ता, वह स्वभाव से नम्र व्यक्ति नहीं था। हम निर्गमन 2:11-14 में हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उन्होंने गुस्सा करके एक व्यक्ति को हत्या की थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसे इसराइलियों का मुक्तिदाता बनना है, इसलिए उसने हथियारों के बल पर उनकी मुक्ति पाने की कोशिश की। लेकिन मूसा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया जब वह परमेश्वर के साथ समय बिताया। यह हम पढ़ते हैं गिनती 12:3 में। बाइबल बताती है कि मूसा के समान और कोई नम्र व्यक्ति नहीं देखा गया है। मिस्र के सैन्य स्कूलों में मूसा को बल का नियम सिखाया गया था और इस शिक्षा का उसके चरित्र पर इतना गहरा प्रभाव था कि उसे प्रेम के नियम के द्वारा इज़राइल का नेतृत्व करने के लिए 40 वर्षों तक शांत और ईश्वर तथा प्रकृति के साथ संवाद करने की आवश्यकता थी। पहाड़ों के एकांत में मूसा को अन्य पाठ भी सीखने थे। आत्म त्याग और कठिनाई के स्कूल में उसे धैर्य सीखना था, अपने जुनून को शांत करना था और पौलुस ने और मूसा ने इसे सीखा। आगे हम पौलुस के चरित्र के परिवर्तन के विषय में गवाही पाते हैं। पौलुस खुद इसका गवाही देता है अग्रिप्पा नामक राजा के सामने। पौलुस के जीवन के विषय में हम पढ़ते हैं, उसके अनुभव के विषय में हम पढ़ते हैं 1 तीमोथियस 1:12-13 में और प्रेरितों 8:3 में और प्रेरितों की पुस्तक उसका 26:9-11 में तथा 2 तीमोथियस 3:10 में। धर्म परिवर्तन से पहले पौलुस अपने चरित्र का वर्णन करने के लिए वह ये सब इस्तेमाल करता है। पौलुस कहता है कि वह इस निंदक उत्पीड़न हानिकारक अत्यंत उत्साही था। वह कहता है आगे, मैंने परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सताया और उसे नष्ट करने का प्रयास किया। या पढ़ते हैं गलतियों 1:13 में। प्रेरितों के काम की पुस्तक में लुका उसे क्रूरता की ओर इशारा करता है। साउल जो उसका पहला नाम था, वह कलीसिया को तबाह कर रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और महिलाओं को घसीट घसीट कर जेल में डालता था। प्रेरितों की पुस्तक 8:3 पद। राजा अग्रिप्पा के सामने अपने प्रवचन में पौलुस ने घोषणा की, मैं भी आश्वस्त था कि मुझे नासरत के यीशु के नाम के विरोध में बहुत कुछ करना चाहिए। मैंने बहुत से संतों को जेल में बंद कर दिया और मैंने उन्हें हर आराधनालय में बार बार दंडित किया और उन्हें इस निंदा करने के लिए उकसाया और उनके खिलाफ क्रोध में आकर मैंने उन्हें सताया। प्रेरितों के काम 26:9-11। कई वर्षों बाद इसी पौलुस ने लिखा, जब लोग हमें बुरा भला कहते हैं तो हम आशीर्वाद देते हैं, 1 कुरिन्थियों 4:12-13। फिर जब उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा तो पौलुस ने फिर से अपने बारे में कहा और अपने सबसे करीबी सहकर्मी को उसकी गवाही देने का आदेश दिया, तुमने मेरी शिक्षा, मेरे आचरण, मेरे जीवन में, मेरे लक्ष्य, मेरे विश्वास, मेरे धैर्य, मेरे प्रेम को देखा है। तीमुथियुस को यह लिखता है 2 तीमुथियुस 3:10 में। हमारा परिवर्तन मूसा या साउल के समान बड़ा नहीं हो सकता है, किंतु हमारा परिवर्तन अगर हुआ है यीशु में, जब हम उसके पास आए, उसको पहचाने हैं और हमारा जीवन बदल गया है, तो लोग हमारे जीवन में देख सकते हैं वह परिवर्तन और फिर वह यीशु के पास आ सकते हैं। यह एक अमूल्य सद्गुण है, नम्रता। 1 पत्रस 3:3-4 में हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। विनम्रता आंतरिक श्रृंगार है जिसे परमेश्वर बहुत मूल्यवान समझता है। प्रेरित इसे सोने, मोतियों या कीमती आभूषणों से भी अधिक उत्कृष्ट और मूल्यवान बताते हैं। जबकि बाहरी श्रृंगार केवल नश्वर शरीर को सुशोभित करता है, नम्रता का आभूषण आत्मा को सुशोभित करता है और सीमित मनुष्य को अनंत परमेश्वर से जोड़ता है। यह परमेश्वर की अपनी पसंद का आभूषण है, जिसने आकाश को प्रकाश के गोले से सजाया है। उसी आत्मा के द्वारा उसने वादा किया है कि वह उद्धार के साथ नम्र लोगों को सुशोभित करेगा। यह हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 149 का 4 में। स्वर्ग के स्वर्गदूत उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ रूप से सुशोभित मानेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को धारण करते हैं और नम्रता और मन की दीनता में उसके साथ चलते हैं। यह लिया गया है पवित्र जीवन की पुस्तक से उसका पृष्ठ 16 से। जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा को नम्रता के अपने अनमोल फल को प्राप्त करने में मदद करने देते हैं, हम अधिक आत्मा संयमित हो जाते हैं और अपने बुरे स्वभाव पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। यह फल जिसे हम प्रतिदिन अपने हृदय में संजोते हैं हमारे चरित्र और अधिक मसीह जैसा बना देता है। पवित्रीकरण का सबसे कीमती फल नम्रता का अनुग्रह है। जब यह अनुग्रह आत्मा में शासन करता है तो स्वभाव इसके प्रभाव से ढल जाता है। परमेश्वर की निरंतर प्रतीक्षा और उसकी इच्छा के प्रति समर्पण होता है। फिलिपी 2:5 और कुलिसी 3:12 तथा इफिसियों 4:1-2 में हम पढ़ेंगे तो हमें मसीह के समान बनने के लिए आह्वान दिया गया है। इसमें मसीह के समान बनने और पवित्र लोगों के समान होने और अपने बुलाहट के योग्य चलने के लिए हमें नम्र बनने के लिए कहा गया है। मनुष्य को परमेश्वर का उत्तराधिकारी और मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी बनने का विशेष अधिकार दिया गया है। जो लोग इस प्रकार से उन्नत किए गए हैं उनके लिए मसीह की अथाह संपत्ति खोली गई है जो दुनिया की संपत्ति से 1000 गुना अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु मसीह के गुणों के माध्यम से सीमित मनुष्य परमेश्वर और उसके प्रिय पुत्र के साथ संगति में ऊपर उठाया जाता है। परमेश्वर के बच्चों के जीवन में नम्रता कैसे प्रकट होती है इसे हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। हमें कैसे लोगों से नम्रता से व्यवहार करना है, पहला हम पाते हैं याकूब 1:21 में, उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हमें परमेश्वर का वचन को नम्रता से ग्रहण करने के लिए कहा गया है। दूसरा तीतुस 3:2 में हम पढ़ते हैं हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सब मनुष्यों के प्रति पूरी नम्रता दिखाएं, यह हमें कहा गया है। तीसरा दूसरों से निवेदन करने के हमारे तरीके कैसे होने चाहिए, पौलुस का उदाहरण हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों 10:1 में। पौलुस अपने बारे खुद कहता है, मैं पौलुस आप ही तुमसे मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण निवेदन करता हूँ। प्यारो सभी युगों में मसीही धर्म की असली ताकत ईसाइयों द्वारा एक दूसरे के प्रति दिखाए जाने वाले प्रेम में रही है। ना केवल उन लोगों के लिए प्रेम जो हमसे प्रेम करते हैं या हमारे पड़ोसी के लिए, बल्कि हमारे शत्रुओं के लिए भी। इसे हम पाते हैं मत्ती 5:43-46 में। मसीह ने इसे कहा है, मसीह ने हमें इस तरह का बर्ताव करने के लिए कहा है। जो लोग मसीह में विश्वास करने का दावा करते हैं उन्हें दया और करुणा के कार्यों में मसीह का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ऐसे लोग न्याय के दिन तक कभी नहीं जान पाएंगे कि उद्धारकर्ता के उदाहरण का अनुसरण करने की कोशिश में उन्होंने क्या अच्छा किया है। यदि हम परमेश्वर के सामने स्वयं को नम्र बना लें तथा दयालु विनम्र कोमल हृदय और दयावान बने तो सत्य की ओर 100 लोग परिवर्तित होंगे जबकि अब केवल एक ही है। प्यारो एक मसीह को जो सबसे बड़ी जीत मिल सकती है वह है स्वयं पर विजय, और जब तक हम स्वयं पर विजय नहीं पा लेते तब तक हम वास्तव में नम्रता प्राप्त नहीं कर सकते। सच्ची नम्रता हमें पवित्र बनाएगी और दूसरों के साथ हमारे संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यह मसीही धर्म का सारांश है। प्यारो इसलिए आइए हम यीशु मसीह को चुने, उसके समान बनने का इच्छा रखे, यीशु के समान नम्र बने। नम्रता एक ईश्वरीय गुण है और स्वर्गीय ताकत है जो धार्मिकता की ओर लोगों को आकर्षण करता है। परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ जो लोग रहेंगे वे लोग नम्र लोग होंगे। आइए हम उसके लोगों के समान जो पवित्र लोग हैं हम नम्र बने, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी आत्मा हमें अगुवाई करे और यह गुण हमें प्रदान करे। वह हमें बहुताय से यह देना चाहता है। आइए हम उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबों को बहुताय से आशीष दे। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए। तू हमें बुलाया है प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए, हमें नम्र चरित्र बनाने के लिए। पिता परमेश्वर हम सबों को तू छू, तेरा आत्मा से चला और हमें आशीष दे, ताकि हम तेरे जैसा चले, नम्र बने और तेरे राज के लिए तैयार हो। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करे, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े,
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद में कामना करते हैं।